चलो उधर छोटा
पेज नंबर 105 उदिलो आरोना पुराम भागे उदिलो आरोना पुराम भागे भिजमने गोरा अमने जागे उदिलो उदिलो आरोना पुरब भागे द्विजमने गोरा आमन जागे उदिलो आरोना पुरब भागे द्विजमने गोरा आमन जागे बकत समुहालया साथे गेला नगर ब्राजे भगत समूह भगत समूह लैया साथे गेला नगर ब्राजे भगत समूह ताई बाजल कोल घन घन ताहे झांझर रो ताई ताई बाजल कोल घन घन ताहे झांझर रो ताई बाजल कोल गन गन ताहे झांझर रो प्रेम ढल ढल सोनर अंग चरने नुपुर बाजे प्रेम ढल ढल सोनर अंग सोनार अंग चरणे नुपुर बाजे प्रेम ढल सोनार अंग चरणे नुपुर बाजे मुकुंद माधव यादव हरि बले न बोलो रे वदन भरे मुकुंद माधव यादव हरि बले न बोलो रे वदन भरे मुकुंद माधव यादव हरि बले न बोलो रे वदन भरे मुकुंद माधव यादव हरि बले न बोलो रे वदन भरे છે નિદ્રા વશે ગેલો રે રાતે દિવસ શરીર સાજે છે નિદ્રા વશે ગેલો રે રાતે દિવસ વશે ગેલો રે રાતે દિવસ શરીર સાજે વશે ગેલો રાતે દિવસ શરીર સાજે મન દુર્લભ માનવ દેહ પાયા કે કર ભાવના કે મન દુર્લભ માનવ મન દુર્લભ માનવ દેહ પાયા કે કર ભાવના કે મન દુર્લભ માનવ દેહ એબે ન બાજલે યશોદા સુત શરમે પડબે રાજે એબે ન બાજલે યશોદા સુત શરમે પડબે રાજે એબે ન બાજલે યશોદા સુત શરમે પડબે રાજે એબે ન બાજલે યશોદા દિન ગેલો બોલે હઈ બે વ્યસ્ત ઉદિત તાપના તાહે નાના વિધ વિપદ
જીવન અનિત્ય જન સારે નાના વિધ વિપદ
નમાશ્રય કરે જતન તુમે થાક આપના કાજે
નમાશ્રય કરે
નમાશય કરે જતન તુમે થાક આપના કાજે
નમાશય કરે
જતન તુમે જીવેર કલ્યાણ સાધન કામ જગતે આસીએ માધુર
જીવેર કલ્યાણ સાધન કામ જગતે આસીએ
કલ્યાણ સાધન કામ જગતે આસીએ માધુર નામ
કલ્યાણ સાધન કામ જગતે આસીએ માધુર
નામ અવિદ્યા તે મેરા તપન રૂપે હૃદય ગગન વિરાજે
અવિદ્યા તે મેરા તપન રૂપે હૃદય
અવિદ્યતે મેરા તપન રૂપે હૃદય ગગન વિરાજે आवे जते मेरा तपन रूपे कृष्णनाम सुधा करियपान जुड़ाओ बाकते विनद प्राण
कृष्णनाम सुधा करियपान जुड़ाओ बाकते विनद प्राण
कृष्णनाम सुधा करियपान जुड़ाओ बाकते विनद प्राण
कृष्णनाम सुधा करियपान
నామ సంకీర్తనానికి శిల భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ కి శిల ప్రభుపాకి జై జోర్ ప్రణామే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ
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 ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురుమిళితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం ఏన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీ రూపాం సాగ్రజాతం సహగణా రఘునాథాన్వితం తం సుజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాం సహగణా లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాం చ హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమస్తుతే తత్ కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభాను సుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియ వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. हम चैतन्य चरितामृत से रीडिंग करेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी और नित्यानंद प्रभु के बीच का जो संवाद है. तो आज आप सब जानते हैं कि चीड़ा दही फेस्टिवल है, चीड़ा दही महोत्सव, पानी हट्टी चीड़ा दही महोत्सव. तो यह विशेष लीला है रघुनाथ दास गोस्वामी और नित्यानंद प्रभु के बीच में, जिसका वर्णन कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में किया है, छठे अध्याय में विस्तार पूर्वक. तो हम सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण किया और संन्यास के बाद चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आए, तो उस समय जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने अपने निजी पार्षदों को अलग अलग स्थानों में क्या किया था, प्रकट कराया था. जब भी भगवान इस जगत में आविर्भूत होते हैं उस समय पहले अपने पार्षदों को भेजते हैं, जैसे कृष्ण प्रकट होने से पहले नंदा यशोदा वसुदेव देवकी आदि बहुत सारे डिवोटीज को उन्होंने पहले भेजा, और उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पहले ही उन्होंने कई सारे भक्तों को आविर्भूत कराया बंगाल के कई स्थानों में, और चैतन्य महाप्रभु के बाद भी हजारों भक्तों का आविर्भाव हुआ जो चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में उन्होंने भाग लिया। तो ऐसे उनमें से एक महान भक्त थे जिनका नाम था रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जिनको प्रयोजन आचार्य कहा जाता है, और उनको दास गोस्वामी नाम से वो सारे विश्व में विख्यात हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी एक बहुत ही धनाढ्य परिवार में उनका जन्म हुआ था, और बचपन से ही उनका अनुराग भौतिक भोग आदि में नहीं था, और निरंतर कृष्ण सेवा और कृष्ण नाम आदि में मग्न रहते थे, और वैराग्य का जीवन यापन करते थे, या वैराग्य उनके हृदय में प्रकट हुआ था। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से ही उनको संग प्राप्त हुआ था हरिदास ठाकुर का, वो छोटे से बालक थे। तो हरिदास ठाकुर जब बेनापोल स्थान जहाँ वो रहते थे वहां से जब यहाँ आए सप्तग्राम, जहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी का विलेज या गांव था जहाँ वो रहते थे, उनके जो पिता थे गोवर्धन मुजुमदार और उनके चाचा थे हिरण्य मुजुमदार, तो उनके पास रघुनाथ जो हरिदास ठाकुर आते हैं, और ये दो हरिदास ठाकुर की बहुत सेवा करते हैं, और हरिदास ठाकुर यदुनंदन आचार्य के साथ वहाँ निवास करते हैं, और कभी कभी रघुनाथ दास गोस्वामी जो बालक थे उनके घर आया करते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था बचपन से ही हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त हुआ था, और बचपन से ही उन्होंने हरिदास ठाकुर की सेवा की थी। और इस दिव्य सेवा का प्रभाव क्या हुआ कि हरिदास, ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, बालक अवस्था से ही उनका कृष्ण नाम में बहुत अधिक गहरा अनुराग बढ़ा, और चैतन्य महाप्रभु को मिलने की लालसा उनके हृदय में तीव्र हो गई। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी अपने पिता से परमिशन लेकर चैतन्य महाप्रभु को पहली बार मिलते हैं। कब? जब वो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर पहली बार शांतिपुर में आए थे अद्वैत आचार्य के घर में, तो वहां रघुनाथ दास गोस्वामी युवक ही थे, जाकर वहां मिलते हैं, और तभी से वो चाहते थे कि मैं ये जो जीवन है भौतिक जंजाल, हाँ, जो हर समय हमारे बंधन को और बढ़ाता है, जैसे जैसे दिन बीतते हैं हमारा बंधन इस भौतिक जगत में और प्रगाढ़ होते जाता है, तो मैं ऐसे अवस्था में नहीं रहना चाहता, मैं तो ऐसे अवस्था से मुक्त होना चाहता हूं और आपकी सेवा में लगना चाहता हूं निरंतर पूर्ण जीवन के लिए। तो ये युवक ही थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं, अभी आप क्या करो, अब वापस जाओ और निरंतर कृष्ण नाम आदि का उच्चारण करो। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी रोते हुए वापस आते हैं, लेकिन आने के बाद भी उनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु को मिलने की और चैतन्य महाप्रभु का संग लाभ करने की और उनके संग में चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की सेवा करने की तीव्र इच्छा थी। और वो घर वापस आए तो उनका घर में मन नहीं लग रहा था, और वो बारंबार वो भागना चाहते थे। तो फिर दूसरी बार जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए निकले तो वो शांतिपुर अद्वैत आचार्य के घर आए थे, और वहां दूसरी बार अपने पिता का परमिशन लेकर वो चैतन्य महाप्रभु से मिले। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मरकट वैराग्य ना कर लोक देखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। महाप्रभु ने उपदेश दिया, महाप्रभु ने कहा अभी तुम्हारी अवस्था नहीं है आने की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि अभी ये परिपक्व नहीं है इस चीज को स्वीकार करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम क्या करो, वापस जाओ और तुम ये मरकट वैराग्य, बंदर का वैराग्य का प्रदर्शन मत करो। मरकट वैराग्य का मतलब है बंदर कभी वस्त्र नहीं धारण करता, नग्न रहता है, और दूसरा वो कभी घर नहीं बनाता। तो बाहरी रूप से लगता है कि कितना अधिक विरक्त है, वस्त्र धारण नहीं कर रहा है, घर नहीं रख रहा है, लेकिन 10 बंदरियों के साथ उनका क्या है, अनैतिक संबंध है। तो ऐसे महाप्रभु ने कहा बंदर के समान मरकट वैराग्य का प्रदर्शन मत करो या स्मशान वैराग्य आदि का प्रदर्शन मत करो, तुम क्या करो वापस चले जाओ अपने घर और वहां क्या करो यथा योग्य विषय भुंज, आप अपने स्थान में रहकर जितना आवश्यक है अपना निर्वाह करने के लिए उतना ही विषयों को स्वीकार करो और उनमें लगते हुए कैसे रहो अनासक्त हया, आसक्त मत हो जाओ। ब्रह्म पद्म पद्रम वाम्बसा, गीता में कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से कमल का फूल कीचड़ या जल में रहता है लेकिन कभी भी उसका स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु यह उपदेश देते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी वापस आते हैं, वापस आकर रघुनाथ दास गोस्वामी का जो हृदय है वो बिल्कुल उन्मत्त हो उठा था और वो वापस आकर घर में मन नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु का आदेश है इसलिए वो घर में बने रहे, लेकिन अपना हृदय किसको उन्होंने प्रदान किया था, चैतन्य महाप्रभु को, और वो घर को जेल के समान समझते थे कि कहां मैं कारागृह में बंद हूं, यहां से कब मैं मुक्त हो जाऊंगा, नीलाचल जगन्नाथपुरी जाऊंगा और महाप्रभु को मिलूंगा। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का आदेश पाकर रघुनाथ दास गोस्वामी आए अपने सप्तग्राम में निवास करने लगे। ये मत रघुनाथेर वत्सरे कगेला द्वितीय वत्सरे पलाये थे मन कहिला। तो इस प्रकार से एक साल चला गया चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करते हुए, और जैसे दूसरा साल शुरू हो गया तो तुरंत ही रघुनाथ दास गोस्वामी सोचने लगे कि कब मैं घर छोड़ूंगा। उन्होंने निश्चय लिया कि अभी घर का त्याग करना है, मुझे इसको छोड़कर चले जाना है। रात्रि उठी एकला चलीला पलाया दूर है ते पिता त्यारे आने लधरिया। तो हर बार रघुनाथ दास गोस्वामी मध्य रात्रि के समय उठकर भागते थे और उनके पिता उनको पकड़कर घर में वापस ले आते थे। और इतना ही नहीं, एक ही बार नहीं कई बार ऐसे हुआ। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी बारंबार घर से भागते थे, बल्कि उनकी वो न भागे इसलिए उनके पिता ने कई सारे 12 सिक्योरिटी गार्ड एक ही व्यक्ति के लिए रखे थे कि अब घर से भाग ना जाए, क्योंकि एकलौता बेटा था, एकलौता पुत्र था। और ऐसे नहीं कि वो बहुत गरीब घर से थे, सबसे अधिक बंगाल में वो धनवान परिवार से थे। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी निरंतर उन्मत्त हो गए थे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। और तब ये जब स्थिति उनके माँ ने देखी तो उनके माँ ने उनके पिता से कहा, वो उनकी माँ उनके पिता से कहती है पुत्र बातुला हैला यहाँ राखह बांधिया। तो उन्होंने कहा देखो हमारा जो बेटा है वो तो पागल हो गया है, उसको क्या करो आप बांध कर रखो। तो उनके पिता कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी की माता को, इंद्र समा ऐश्वर्य श्री अप्सरा साम ये सब बांधे ते नारे केल जेरमान। कहते कि तुम कौन सी बात कर रही हो, इसको जो ये भौतिक चैन है या सलाखे हैं इसको बांध नहीं सकती, बल्कि इस जगत में व्यक्ति दो चीजों से अपने आप बन जाता है, उसको दूसरे और बंधन की आवश्यकता नहीं है। वो उनके पिता कहते इंद्र सम ऐश्वर्य श्री अप्सरा सम कि ये जो रघुनाथ है इसके पास ऐश्वर्य कैसे है, धन संपदा इंद्र के समान है, और दूसरी चीज क्या है श्री अप्सरा सम इसकी जो पत्नी है वो सबसे अधिक सौंदर्यवान है, अप्सराओं को भी पराजित करने का सौंदर्य इसके पत्नी में है, फिर भी ये सब बांधिते नारी केल जेरमान ये चीजें भी इस रघुनाथ को बांध नहीं पा रही हैं, तो तुम कौन से बंधन की बात कर रही हो। इस प्रकार से उनके जो पिता है वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो प्रारब्ध है उसको हम खंडन नहीं कर सकते या तोड़ नहीं सकते, निरस्त नहीं करते कर सकते। तो उनके पिता ने कहा चैतन्य चंद्रे र कृपा है या जहारे चैतन्य चंद्रे रातुल के राखीते पारे। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई है और जो चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल हो गया है, इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है या ऑब्जेक्ट नहीं है वो उस व्यक्ति को बांध के रख सकते हैं। उन्होंने कहा ये चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल हो गया है, अभी इसको कोई भी चीज बांध नहीं सकती। तो इस प्रकार से उनके पिता और माता आपस में चर्चा करते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा योजना बनाते थे कि कैसे मैं इस स्थान को छोड़कर भाग जाऊं। तो जब ये सब हो रहा था तो उसी समय नित्यानंद प्रभु सप्तग्राम के पास आए थे। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे और चैतन्य महाप्रभु अलग अलग भक्तों को सेवा देकर बंगाल में भेजते थे प्रचार के लिए। फिर उन्होंने देखा, चैतन्य महाप्रभु ने सोचा मैं तो नवदीप छोड़कर जगन्नाथपुरी में आया हूं, तो मेरे आने के बाद जो आंदोलन मैंने शुरू किया था, ये कृष्ण भावना का प्रचार का जो आंदोलन है, इसको कौन देखेगा, कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु को कहा एकांत में बुलाकर जगन्नाथपुरी में कि हे नित्यानंद तुम क्या करो, नवद्वीप चले जाओ और गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करो और कृष्ण भावना का प्रचार करो। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु के आदेशों के अनुसार नित्यानंद प्रभु वहां से कई सारे भक्तों का टीम बनाकर वो निकलते हैं बंगाल के लिए। और वो टीम इतना अद्भुत था नित्यानंद प्रभु का, और उनके जो संगी है, उनके जो पार्षद है, चैतन्य भागवत में इसका बहुत विस्तार से वर्णन आता है उनके उनकी ट्रैवलिंग का जगन्नाथपुरी से नवद्वीप तक। कई महीने बीत गए क्योंकि सारे जो इनके संगीत है वो सारे पागल थे, पागल मतलब कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गए थे। एक जहाज आएगा सारे उसके पीछे चले जाते थे, और बहुत लंबे दूर जाने के बाद वो किसी को रास्ता पूछते थे और पता चलता था कि कई किलोमीटर हम गलत आए हैं, फिर वापस आ जाते थे। या उनमें कई ऐसे भक्त थे जैसे अभिराम ठाकुर है, ऐसे कई सारे नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे कि जो एक स्थान में खड़े हो गए तो एक हफ्ते के लिए खड़े हो जाते थे। तो नित्यानंद प्रभु का पूरा यात्रा उसी स्थान में एक हफ्ते के लिए रहता था। तो ऐसे बहुत लंबे समय के बाद वो बंगाल में प्रवेश करते हैं और बंगाल में पानीहाटी स्थान में आते हैं, पानीहाटी गांव में, जहां नजदीक के राघव पंडित का घर था। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु पानीहाटी गांव में आए और नदी के किनारे अपने इन सारे भक्तों के संग में बैठे हुए थे। तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि नित्यानंद प्रभु आए हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि मुझे नित्यानंद प्रभु से जाकर मिलना चाहिए। और फिर एक दिन वो ये विचार करके नित्यानंद प्रभु की ओर निकलते हैं। पानीहाटी ग्राम में आइला प्रभु दर्शन, कीर्तनिया सेवक संगे आर बहुजान। रघुनाथ दास गोस्वामी आए पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु का दर्शन करने के लिए। नित्यानंद प्रभु के संग में सारे कीर्तनिया वगैरह थे, अन्य सारे भक्त थे। गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडार ऊपरे, बसिया छेंजे न कोटी सूर्योदय करे। तो गंगा के किनारे वृक्ष के नीचे जो चबूतरा था जिस पर नित्यानंद प्रभु अपने सेवकों के संग बैठे थे, और ऐसा लग रहा था कि हजारों सूर्य के समान जो प्रभा है वो वहां से निकल रहा था, वो तेज। तले ऊपरे बहु भक्त हैया चे व्यस्तित, देखी प्रभुर प्रभाव रघुनाथ विस्मित। रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा केवल नित्यानंद प्रभु ही नहीं बैठे हैं कि बल्कि उस चबूतरे के आसपास चैतन्य नित्यानंद प्रभु के सारे संगी सेवकगण बैठे हैं। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा, दंडवत हया से पड़िला कत दूरे, सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। तो नित्यानंद प्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत दूर से देखा, और जहां से देखा दूर से ही उन्होंने नित्यानंद प्रभु को दंडवत किया। तो नित्यानंद प्रभु के जो सेवक हैं वो कहते कि देखो देखो आपको रघुनाथ दंडवत प्रणाम कर रहा है। सुने प्रभु कहे चोरा दिले दर्शन, आया आया आज तोरा करे मुदंडन। तो नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को देखा। तो पहले से नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को जानते थे। हर बार जो चैतन्य महाप्रभु मिले थे रघुनाथ दास गोस्वामी को, दो बार पहले, तो उसी समय नित्यानंद प्रभु भी मिले थे। तो नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को देखा और दूर से ही नित्यानंद प्रभु कहने लगे, चोरा दिली दर्शन, कि हे चोर तुम कौन हो, चोर हो, तुमने आज मुझे दर्शन दिया है, हाँ यहाँ आओ, अभी नजदीक आओ, नजदीक आकर मैं तुम्हें क्या करूंगा, दंड दूंगा। हाँ तो ये नित्यानंद प्रभु उनको कहते हैं, क्यों उनको चोर कहते हैं और क्यों उनको दंड देना चाहते हैं। वास्तव में उनको चोर इसलिए कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु की प्रॉपर्टी कौन है, चैतन्य महाप्रभु है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का धन है या संपदा है या प्रॉपर्टी है, उसको नित्यानंद प्रभु की परमिशन से रघुनाथ दास गोस्वामी प्राप्त करना चाहते थे, हासिल करना चाहते थे। हाँ इसी कारण से उन्होंने कहा मेरे बिना परमिशन से तुम क्या कर रहे हो, महाप्रभु को अप्रोच कर रहे हो, महाप्रभु को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हो। वास्तव में ये जो एटीट्यूड है ये किसका है, चोर का है। हाँ और इसी कारण से मैं क्या करूंगा, तुम्हें दंड प्रदान करूंगा। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु बहुत महत्वपूर्ण हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है, आदि गुरु है। और आदि गुरु और कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नायान्य, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। तो व्यक्ति गुरु को बाईपास करके क्या करना चाहता है, कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, ये मायावाद सिद्धांत है। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु सिखाते हैं कि व्यक्ति को हमेशा आध्यात्मिक गुरु के अनुगत होकर श्री गुरु को अप्रोच करना चाहिए। जैसे श्रीमद् प्रभुपाद एक कोटेशन में कहते हैं, दिस इज द सिम्टम ऑफ प्योर डिवोटी, वन शुड सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर फर्स्ट, इट इज नॉट दैट वन शुड बाईपास द स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिजायर टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड, दिस इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ फॉर ए वैष्णव। तो वैष्णव के लिए सिद्धांत नहीं है कि आध्यात्मिक गुरु को गुरु की सेवा किए बिना या उनको लांग कर सीधा कृष्ण की सेवा करना चाहता है, ये पागलपन है। इसलिए है इस चीज को स्थापित करने के लिए हमें वास्तव में क्या दिया है, गुरुवाष्टकम दिया है। सुबह उठते ही हमें पहले यह स्मरण कराया जा रहा है कि आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक गुरु का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। उठते ही हमें कृष्ण का स्मरण से पहले क्या प्रेयर सामने दी गई है, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, आध्यात्मिक गुरु का स्मरण और उनके कार्यकलापों का स्मरण, उनकी महिमा का स्मरण और उनका जो एक्टिविटीज है उनका स्मरण करने के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें सिखाते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने सुबह के समय में ये मंगल आरती के रूप में हमें प्रदान किया है, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु क्या है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर, सारे शास्त्र इस बात की गवेषणा करते हैं कि आध्यात्मिक गुरु साक्षात हरि है। तो इस प्रकार से व्यक्ति कृष्ण सेव्य भगवान है और आध्यात्मिक गुरु कौन है, सेवक भगवान। तो सेवक भगवान के अनुगत हुए बिना, उनको सर्व किए बिना जो सेव्य भगवान कृष्ण है उनकी सेवा करना असंभव है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, यश प्रसादात भगवत प्रसादो, यश अप्रसादात न गति कुतोपि, कि आध्यात्मिक गुरु की कृपा के बिना, उनकी कृपा के बिना कृष्ण की कृपा प्राप्त करना असंभव है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि वास्तव में आध्यात्मिक गुरु की प्रॉपर्टी कौन है, कृष्ण है। प्रभुपाद कहते कृष्ण इज द प्रॉपर्टी ऑफ हिज प्योर डिवोटीज, कृष्ण तो शुद्ध भक्तों की संपदा है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं कि कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पार, तुम्हार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाय तव पाछे पाछे। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, वो वैष्णव है आध्यात्मिक गुरु, अब कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण आपके हैं, कृष्ण दिते पार, और आपके पास कितना सामर्थ्य है कि आप किसी भी व्यक्ति को कृष्ण प्रदान कर सकते हो। कृष्ण दिते पार तुम्हारा शक्ति आछे, आपके पास वो शक्ति है। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाय तव पाछे पाछे। तो शिष्य को क्या करना चाहिए, गुरु के पीछे भागना चाहिए उनकी सेवा में, और कैसे भागना चाहिए, कृष्ण कृष्ण बोली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि एक शिष्य को गुरु की सेवा इस भावना से करनी चाहिए, अपने आप को हमेशा सबसे अधिक नीच सोचते हुए, नीच की भावना को हृदय में धारण करते हुए आध्यात्मिक गुरु की सेवा में लगना चाहिए। इसलिए भक्ति या कृष्ण प्राप्ति असंभव है आध्यात्मिक गुरु को सर्व किए बिना। हम रोज गुरु पूजा गाते हैं कि उनके चरण कमलों में ही कृष्ण भक्ति है। तो भगवत भक्ति हमें प्राप्त होती है आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से। और आध्यात्मिक गुरु कौन है? कृष्ण की जो स्वरूप शक्ति है उनका मैनिफेस्टेशन है। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति, जिसको पराशक्ति, अंतरंगा शक्ति, योग माया शक्ति, स्वरूप शक्ति आदि कहा जाता है, तो ऐसी स्वरूप शक्ति का जो मैनिफेस्टेशन है वो आध्यात्मिक गुरु है। और उनके बिना भगवत भक्ति या भगवत प्राप्ति करना असंभव है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु कौन है? तव निज जने कौन महाजने पाठाया दिल तुमी। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रति कि आप बहुत अधिक दयालु हो और मेरे जैसा जीव इस जगत में नाना योनी सदा फिरे, अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहा था, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आपने क्या किया? अपने निज जन, तव निज जन, निज में जो सबसे करीब है, सबसे क्लोज है, ऐसे व्यक्ति को आपने भेजा है। तो आध्यात्मिक गुरु ये जो वैष्णव गण है वो कृष्ण के सबसे अधिक निकट है और कृष्ण उनको भेजते हैं इस जगत में। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आध्यात्मिक गुरु की सेवा में लगना, तभी वास्तव में कृष्ण की हम सेवा कर सकते हैं या कृष्ण प्राप्ति की इच्छा धारण कर सकते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे बनारस में, तो उन्होंने कहा गुरु पादाश्रय दीक्षा गुरु र सेवन सद्धर्म पृच्छा साधु मार्गानुगमन। तो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ही है गुरु पादाश्रय दीक्षा गुरु र सेवन। गुरु पादाश्रय व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए और उनसे दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। दीक्षा का मतलब ये संबंध आध्यात्मिक गुरु से या कृष्ण से। तो गुरु पादाश्रय दीक्षा गुरु र सेवन, जब व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है तो उसको दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और दीक्षा का मतलब ये कि शुरुआत है, ये एक संबंध है, और पहले तो संबंध स्थापित होता है, उसके बाद महाप्रभु कहते गुरु र सेवन। हाँ, कोई युवक या युवती है तो उनका पहले संबंध स्थापित होता है कि हाँ ये पति है और ये पत्नी है। संबंध के बिना सेवा की शुरुआत नहीं हो सकती। तो इसलिए दीक्षा संबंध को स्थापित करता है कृष्ण से, गुरु से और पूरे इस संप्रदाय से, परंपरा से। और उसके बाद वास्तव में व्यक्ति गुरु की सेवा करने लगता है। हाँ, सद्धर्म प्रोक्षा साधु मार्गानुगमन, और गुरु से उपदेश इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करने चाहिए पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए। तो इसलिए उसी को रूप गोस्वामी ने कहा आदो गुरु पादाश्रय श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में श्री गुरु का आश्रय लेना और उनको सर्व करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आदि लीला में कहते हैं आमार भक्तेर पूजा आमा है ते बड़ा, यही तो सिद्धांत गीता भागवते कैल दृढ़। महाप्रभु कहते हैं कि मेरी पूजा से बढ़कर मेरे जो गुरु है, मेरे जो भक्त हैं, उनकी सेवा करना ये सर्वोत्कृष्ट है। और इसी की शिक्षा या इसी को स्थापित किया गया है भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम में। भागवतम में उद्धव को कृष्ण कहते हैं मद भक्ता पूजा व्याधि, कहा मेरे भक्त की पूजा उत्कृष्ट है मेरी पूजा से भी। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक गुरु की सेवा ये प्रमुख कार्य है। और कृष्ण अपने आचरण से ये सिखाते हैं। सांदीपनि मुनि की उन्होंने सेवा की, लकड़ लाने के लिए जाते थे। तो आध्यात्मिक गुरु की सेवा दो प्रकार से हम करते हैं, वपु सेवा और वाणी सेवा। दोनों ही प्रकार से जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले तुरंत हमें उत्साह के साथ उस सेवा को स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार सेवा को करने के लिए तत्पर होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति श्री गुरु की सेवा करने लगता है तुरंत कृष्ण का हृदय सॉफ्ट होने लगता है। उस जीव के लिए कृष्ण का हृदय पिघलने लगता है, क्योंकि कृष्ण सबसे अधिक आनंद अनुभव करते हैं जब वो देखते हैं कि एक जो जीव अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा में लगा है। और फिर कृष्ण का हृदय जब द्रवित होता है तो उस द्रवित हृदय के द्वारा कृष्ण अपनी अनुकंपा उस जीव के प्रति करते हैं। इसी कारण से हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं कि दो ब्राह्मण विद्यानगर से तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। एक वृद्ध ब्राह्मण था और एक युवा ब्राह्मण था। और पूरी यात्रा में तीर्थ यात्रा भ्रमण में जो युवा ब्राह्मण है उन्होंने सेवा की। किसकी सेवा की? उस वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की। और जब वो वृंदावन पहुंचे जहां गोविंद देव का मंदिर है, उस स्थान में पहले गोपाल का मंदिर था वज्रनाभ के द्वारा स्थापित। तो ऐसे गोपाल के सामने वो गए दर्शन करने के लिए। और ये जो बड़ा ब्राह्मण था या बड़ा विप्र था, उन्होंने सोचा कि पूरी यात्रा में इन्होंने मेरी इतनी सेवा की है, इनकी कृपा से वास्तव में मेरी यात्रा सफल हो गई है, कृष्ण का दर्शन आदि में कर पाया, वृंदावन धाम आ पाया, तो मैं बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ इस युवा ब्राह्मण के प्रति। तो मुझे कुछ रेसिप्रोकेट करना चाहिए, कुछ बदले में कुछ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा, उस बड़े ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपको मेरी कन्यादान करना चाहता हूँ, अपनी बेटी आपको प्रदान करना चाहता हूँ। हाँ, तो वो ब्राह्मण कहते हैं, कन्यादान पात्र आमी नाहय तोमार, कृष्ण प्रित्य करी तोमार सेवा व्यवहार। वो ब्राह्मण कहता है कि मैं तो आपकी कन्या को स्वीकार करने के योग्य नहीं हूं, और ये मत समझो कि मैं आपकी सेवा में लगा था कुछ भौतिक आकांक्षा को लेकर, भौतिक इच्छाओं को लेकर। नहीं, मैं तो केवल आपकी सेवा में नियुक्त हुआ था कृष्ण प्रित्य करी तोमार सेवन, क्योंकि कृष्ण इससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इसी चीज को मैं जानता हूं और जिसके कारण मैं केवल पूरी यात्रा में आपकी सेवा में नियुक्त हुआ था। कृष्ण प्रत्य करी तुम्हारा सेवन, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के संतुष्टि के लिए मैं आपकी सेवा कर रहा था। क्यों? ब्राह्मण सेवाय कृष्णेर प्रीति बड़ है, तहार संतोष भक्ति संपद बाढ़ है। कि ब्राह्मण या भक्त या गुरु की सेवा करने से क्या होता है, कृष्णेर प्रीति बड़ा है, कृष्ण के प्रति वो जो जीव है जो सेवा में लगा है आध्यात्मिक गुरु के, उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। ताहर संतोष भक्ति संपद बाढ़ है। और जब आध्यात्मिक गुरु संतुष्ट हो जाते हैं तो शिष्य के हृदय में भक्ति रूपी जो संपदा है, धन है, वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो ये सीक्रेट है। वो छोटा विप्र कहता है कि इस कारण से मैंने अपने आप को नियुक्त किया था आपकी सेवा में। इसी प्रकार से माधवेंद्र पुरी और ईश्वर पुरी के बारे में हम पढ़ते हैं चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में। तो ये महत्वपूर्ण है। ये जो चीड़ादेही फेस्टिवल है, इसे प्रमुख शिक्षा है कि आप नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु है उनको अप्रोच किए बिना रघुनाथ दास गोस्वामी सीधा चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करना चाहते हैं। उसका मतलब ये है कि आध्यात्मिक गुरु की सेवा में नियुक्त होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि उनकी कृपा से क्या होगा, कृष्ण की कृपा अनुकूल हो सकती है। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में ईश्वरपुरी का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, ईश्वरपुरी गोसाई करे श्रीपाद सेवान, सोहस्ते करे न मल मूत्रादि मार्जन। तो ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी दो शिष्य थे। तो सारे जगत को शिक्षा प्रदान करने के लिए माधवेंद्रपुरी ये आचरण करते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जब माधवेंद्रपुरी गोपाल के लिए चंदन लाने के लिए ओरिसा पहुंचे और जगन्नाथपुरी से आकर वो रेमुना में खीरचोरा गोपीनाथ में रहे, चातुर्मास कंप्लीट करके जगन्नाथपुरी में, तो ये जो दो भक्त थे उनके शिष्य थे,
वो माधवेंद्रपुरी के पास थे, ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी। और माधवेंद्रपुरी बहुत अधिक वृद्ध हो गए थे, अशक्त हो गए थे शारीरिक रूप से। तो ऐसे ईश्वरपुरी बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आध्यात्मिक गुरु ईश्वरपुरी की सेवा में लगे थे। श्रीपाद सेवन सो हस्ते करें मल मूत्रादि मार्जन। हाँ, क्योंकि माधवेंद्रपुरी वृद्ध थे तो वो हिल चल नहीं सकते थे, तो ईश्वरपुरी उनके मल मूत्र आदि को भी क्लीन करते थे, उनकी सेवा में लगते थे। और क्या करते थे? निरंतर कृष्ण नाम कराय स्मरान, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाय अनुक्षान। तो ऐसे ईश्वरपुरी अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने निरंतर कृष्ण नाम करते थे, कृष्ण नाम का स्मरण कराते थे और कृष्ण लीलाओं का वर्णन करते थे। तो माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी की सेवा से बहुत अधिक आनंद अनुभव करते थे। तुष्टहयपुरी तारे करी अलंगन, वर दिला कृष्ण तो मार हव का प्रेमधान। तो माधवेंद्रपुरी ने देखा कि ये ईश्वरपुरी का इतना अधिक सेवा भाव है हाँ मेरे प्रति, या ईश्वरपुरी का अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति इतना प्रगाढ़ सेवा की भावना है, तो उनसे संतुष्ट हो गए। आध्यात्मिक गुरु तुष्ट हो जाते हैं जब शिष्य की सेवा को वह देखते हैं, और सेवा के कारण उनका हृदय गदगद होता है हाँ, और उसके कारण वो आलिंगन करते हैं। माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी का आलिंगन करते हुए उनको कहते हैं वर दिला कृष्ण तुमार हौक प्रेम धन। वो कहते हैं कि कृष्ण मैं तुम्हारा क्या हो जाए प्रेम, कृष्ण प्रेम रूपी जो धन है वो तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाए। जब गुरु बोलते हैं तो कृष्ण करने के लिए, आध्यात्मिक गुरु के वचनों की पूर्ति करने के लिए कृष्ण को तत्पर होना होता है। नारद ने जैसे वो नल कुंवर और मणि गुरु को श्राप दिया हाँ, तो कृष्ण को मदर यशोदा ने बांधा था उखल से, बांधकर इतना उनको बोझा ढोते हुए जाना पड़ा कि नारद ने कहा वो वृक्ष रखे हैं जो दो नलकुवर और मणिग्रीव, और उनको जाकर गिरा दिया, उद्धार किया। क्यों? नारद के वचनों को रक्षा करने के लिए। तो उसी प्रकार से ईश्वरपुरी की सेवा को देखकर माधवेंद्रपुरी संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि कृष्ण के प्रति कृष्ण प्रेम रूपी धन तुम्हारे हृदय में जागृत हो। सही है ते ईश्वरपुरी प्रेम रसागर, रामचंद्रपुरी है ल सर्व निंदा कर। तो दो प्रकार के शिष्य थे, एक तो देखा कि ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा बिना किसी कपटता के साथ की। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे कि कई शिष्य होते हैं गुरु की चीजों को यूज करते हैं और गुरु से क्या प्राप्त करते हैं, प्रशंसा प्राप्त करते हैं। जैसे प्रभुपाद ने जब कहा, उनके एक शिष्य ने कहा कि हम भारत में प्रचार के लिए करने के लिए जाएंगे तो हम मर्सिडीज ले जाएंगे और हर मर्सिडीज के ऊपर ना स्पीकर वगैरह होगा और हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तो प्रभुपाद को आइडिया बहुत अच्छा लगा। प्रभुपाद ने कहा आप कैसे उसको परचेज करोगे? प्रभुपाद ने कहा आपका, शिष्य ने कहा आपका जो बीबीटी का धन है ना उससे हम परचेज करेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा यह गलत है, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो प्रभुपाद ने एक स्टोरी सुनाई उनको। प्रभुपाद ने कहा एक गुरु थे और एक शिष्य था, वो आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए शिष्य बहुत तत्पर रहता था और गुरु की जो भी धन आदि है या बाकी जो सुविधाएं वो शिष्य के पास हुआ करते थे। तो वो शिष्य ने गुरु को एक दिन बुलाया हाँ कि आप आइए हमारे घर, प्रसाद आदि लीजिए, आपके संग का हम लाभ प्राप्त करेंगे और बहुत कुछ। तो वो गुरुदेव आए उस शिष्य के घर और देखा कि कितना बड़ा स्वागत हो रहा है, माल्यार्पण हो रहे हैं, सब कुछ सजाया गया है और इतना अच्छा प्रसाद और सबके लिए सारी पूरी व्यवस्था है। तो ये देखकर गुरु बहुत हर्षित हुए और उस गुरु ने पूछा कि आपने ये अरेंजमेंट कैसे किया? उन्होंने कहा गुरुदेव जो आपने मेरे पास धन छोड़ा था उसी के द्वारा ही मैंने सारी सुव्यवस्था की है। तो प्रभुपाद कहते इस प्रकार से हमें नहीं होना चाहिए हाँ। तो यहाँ माधवेंद्रपुरी के दो शिष्य थे, रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी प्रेमेर सागर, कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ईश्वरपुरी क्या है? प्रेम के सागर है हाँ। क्यों? केवल उन्होंने बिना किसी हेतु के और अविरत आयतु की अप्रतिहता, बिना किसी भौतिक हेतु के और निरंतर। अप्रतिहता का मतलब है निरंतर, कंटिन्यूअसली उन्होंने सेवा की श्रीपद माधवेंद्र पुरी की, जिसके कारण उनका हृदय कृष्ण प्रेम का सागर बना। और दूसरे शिष्य थे रामचंद्र पुरी, जो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते थे। हाँ, क्या ढूंढते थे? निंदा करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें ढूंढते थे, उनका स्वभाव ही ऐसा बन गया था। हाँ, इवन वो भक्तों में निंदा देखते थे, भक्तों में दोष ढूंढते थे, उनकी निंदा करते थे। उन्होंने अपने गुरु की भी निंदा की और उस आगे चलकर परम भगवान चैतन्य महाप्रभु की भी। तो ऐसे कृष्णदास कविराज कहते हैं, महद अनुग्रह निज ग्रहेर साक्षी दुई जने, यही दुई द्वारे शिकायला जग जने। तो ये साक्षी हैं कि एक महान भक्त का या गुरु का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के लिए कृष्ण भी उस व्यक्ति के अनुगत हो जाते हैं। माधवेंद्र पुरी की सेवा की ईश्वर पुरी ने, तो उनकी सेवा और उनकी महिमा को स्थापित करने के लिए साक्षात कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य बनते हैं। इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है? तो ऐसे इससे हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक गुरु की सेवा में अपने आप को हम नियुक्त करते हैं पूर्ण रूपे ना, तो निश्चित रूप से कृष्ण की जो कृपा है वो उस शिष्य या भक्त के ऊपर होती है। और कैसे अपने गुरु के लिए अनुराग होना चाहिए एक शिष्य का, चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास या दीक्षा ग्रहण की ईश्वरपुरी से, और फिर संन्यास ग्रहण करके वो आ रहे थे बंगाल, तो आते आते एक गांव में आए, कुमारहट्ट नाम का जो गांव है। आपने ईश्वर श्री चैतन्य भगवान देख लेना ईश्वरपुरी रा जन्म स्थान। तो चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते करते बंगाल के गांव में आए जहां ईश्वरपुरी का जन्म हुआ था। प्रभु कहे कुमार हट्टे रा नमस्कार, श्री ईश्वरपुरी रा जे ग्रामे अवतार। उसमें गांव में आए, उस गांव में, और उस गांव को महाप्रभु ने प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? कि यहां मेरे आध्यात्मिक गुरु का जन्म हुआ है, आध्यात्मिक गुरु के चरण पड़े हैं। बहुत अधिक महाप्रभु ईश्वरपुरी के प्रति अपनी आसक्ति प्रकट करते हैं। और वहां प्रणाम करके उस गांव में महाप्रभु रोने लगे, रास्ते में गिरते हुए। सेस्ताने मृतिका अपने प्रभु तुले लई लेना बहिरवा से बांधी एक सुले। तो उन्होंने क्या किया, उस विलेज की जो मृतिका यह है डस्ट है या मिट्टी है, उसको महाप्रभु ने थोड़ा अपने ग्रहण किया और अपने वस्त्र में, बहिर वस्त्र में उनमें बांधा, ताकि इस ये जो आध्यात्मिक गुरु ने यहाँ क्या किया था, जन्म ग्रहण किया था। प्रभु बोले ईश्वर पुरी रा जन्म स्थान, ये मृतिका आमारा जीवन धन प्राण, कि ये ईश्वर पुरी का जन्म स्थान है और ये जो मिट्टी है ये मेरा धन प्राण है। जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि महान वैष्णव की जो धूली है, महत पादो रजोभिषेकम, महत पाद महान जो आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों की जो धूली है, उससे जब तक अभिषेक नहीं हमारा होता तब तक वास्तव में हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो सकते, या भौतिक आसक्तियां नहीं जा सकती। तो उसका मतलब क्या है कि आध्यात्मिक गुरु को पूर्ण रूपे न कोई शरणागत होता है, उनकी सेवा में लगता है और उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, तो वो वास्तव में आध्यात्मिक गुरु के प्रति क्या है, आसक्त हो रहा है। तो ऐसे आसक्ति के लिए श्वेता शतर उपनिषद का श्लोक प्रभुपाद हमेशा कोट किया करते थे। प्रभुपाद कहा करते थे, यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु दश्यते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो जिस भक्त का अनुराग कृष्ण के लिए है, वैसे ही अनुराग आध्यात्मिक गुरु के लिए हो, तो उसके हृदय में सारे जो शास्त्रों के सार हैं वो प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, विदाउट सर्विंग गुरु वन कैनॉट बिकम एन अनलॉयल डिवोटी, कि गुरु की सेवा किए बिना कोई व्यक्ति अनलॉयल भक्त नहीं बन सकता। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज को समझना, और इसी चीज को स्थापना करने के लिए नित्यानंद प्रभु जानबूझकर रघुनाथ दास गोस्वामी को देखकर वो बोल रहे हैं,
कि तुम चोर हो, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, मेरे धन को प्राप्त करना चाह रहे हो मुझे साइड में रखकर। तुम आओ इधर, मैं क्या करूंगा, तुम्हें दंडित करूंगा। और क्या दंड देंगे वो उनको, प्रभु बोलाए, प्रभु बोलाए थे हो निकटे ना करे गमान, आकर्षिया तारमा थे प्रभु धरे लाचरान। तो वो निकट तो नहीं आए रघुनाथ दास गोस्वामी, लेकिन नित्यानंद प्रभु खुद गए और जाकर उनके सर में अपने चरण रखे। और नित्यानंद प्रभु ने कहा, निकटे ना आई स चोरा भाग दूरे दूरे, आज ही लागी याची दंडी मुँह तो मारे, तुम निकट क्यों नहीं आ रहे हो और इस कारण से मैं तुम्हें दंडित करूंगा। उन्होंने कहा, क्या दंड आप मुझे दे रहे हैं? तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, दधि चिड़ा बक्षण कराह मोर गने, सुने आनंदित हैला रघुनाथ मने। उन्होंने कहा, मेरे जितने भी संगी हैं, मेरे जो पार्षद या भक्त है, उनको क्या करो, दही और चिवड़ा खिलाओ। हाँ, दही चिड़ा फेस्टिवल। तो ये सुनकर रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत अधिक आनंदित हो जाते हैं। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने सेवकों को अलग अलग गाँव में भेजा और सब गाँव में उन्होंने क्या किया, सबने जितनी ये खाद्य सामग्री थी, वस्तुएं थी, चीड़ा है, दही है, दूध है, संदेश है, चीनी है, केला आदि है, इन सबको चारों दिशाओं से मंगाया। महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन, आसिते लागिल लोक असंख्य गणान। तो इस फेस्टिवल का नाम सुनकर ही आसपास के गांव के ब्राह्मण आदि सज्जन व्यक्ति उस स्थान में आने लगे, पानी हट्टी में जहां नित्यानंद प्रभु बैठे थे। आर ग्रामांतर है थे सामग्री आनिला, शत दुई चारी होलना तहा आनाइला। और सारे स्थानों से सामग्री लाई अलग अलग गांव से, और बड़े बड़े गोल मिट्टी के पात्र लाए। और नित्यानंद प्रभु की तुष्टि के लिए केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि ये बाकी वैष्णवों की भी कृपा आपको आवश्यक है। जैसे रूप और सनातन को चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दिया राम केली में, उस रात्रि में महाप्रभु ने कृपा की और महाप्रभु ने कहा कि देखो ये सारे वैष्णव गण हैं, नित्यानंद प्रभु या हरिदास ठाकुर और ये सारे वैष्णव को दिखाया और कहा जाओ इनसे कृपा की याचना करो। तो रूप सनातन जाकर सारे वैष्णव के चरणों में गिरते हैं। तो हमें ये भी होना चाहिए, दोनों चीजें हैं कि हम भक्तों का सम्मान करते हुए आदर देते हुए हमें क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। रामानुजाचार्य अपने आचरण से सिखाते हैं। रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ श्रीरंगम से एक स्थान में जा रहे थे, तिरुपति जा रहे थे। तो उस समय बहुत बड़ा टीम था, वो निकले हुए थे उस यात्रा में। तो देखा कि अभी इतना बड़ा ग्रुप है जिनको प्रसाद आदि की अरेंजमेंट करने थी, तो उन्होंने अपने दो शिष्यों को भेजा। आगे जो एक टाउन था जिसमें रामानुजाचार्य के दो शिष्य रहते थे, गृहस्थ शिष्य, एक तो बहुत धनवान था और एक गरीब था। तो इन दो शिष्यों को भेजा, कहा कि जाइए और उनको आप मैसेज दो कि इतने भक्त हैं, इन सब की व्यवस्था करनी है, हम सब पहुंचेंगे दोपहर के समय या रात्रि के समय। तो वो दो शिष्य जाते हैं, धनवान जो शिष्य था रामानुजाचार्य का, उनके घर, और जाते हैं कि गुरुदेव आने वाले हैं, इतने भक्तों के संग में है, आपको सेवा की व्यवस्था करनी है। तो वो जो धनवान शिष्य था ये सोचकर ही आनंदित हो उठा और तुरंत बहुत सारे कार्य में मग्न हुआ। और ये बेचारे दो भक्त गए थे, उनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया, और ये दोनों वापस आ गए। और रामानुजाचार्य ने पूछा कि आपने बताया उनको? ये दो शिष्यों ने कहा, हाँ हाँ हम बता के आए मैसेज, मुझे ये बताइए कि आप दोनों के साथ उन्होंने कैसे व्यवहार किया। उन्होंने कहा, हमें तो पानी के लिए भी नहीं पूछा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर रामानुजाचार्य ने कहा कि वो सेवा के योग्य नहीं है, वो ये नहीं जानता, वो वैष्णव की सेवा नहीं कर पाता या ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या वो गुरु को सर्व कर सकता है। तो उन्होंने कहा, हाँ हम उनके घर नहीं जाएंगे, मेरा दूसरा शिष्य है जो बहुत ही गरीब है, उनके घर जाएंगे। और वास्तव में रामानुजाचार्य पूरे ग्रुप को लेकर गए, उनका नाम, उस शिष्य का नाम वरदा या समथिंग था,
पति पत्नी थे दोनों, इतने गरीब थे कि पत्नी के पास पहनने के लिए कोई वस्त्र नहीं था। पति एक ही वस्त्र था वो पहन के ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। और जब रामानुजाचार्य पहुंचे तो घर का दरवाजा बंद था। रामानुजाचार्य ने नॉक किया और वो अंदर से उन्होंने आवाज दिया। रामानुजाचार्य समझ गए उनके जो डिसाइपल है वो डिवोटी की जो पत्नी है उसके शरीर में वस्त्र नहीं है। रामानुजाचार्य ने अपना ऊपर का वस्त्र, जो ऊपर का चद्दर सा वस्त्र होता है, वो अंदर फेंका और उस जो डिसाइपल माता जी है उन्होंने धारण किया और आई गुरु को प्रणाम किया और उनकी सेवा के लिए तत्पर हो गए। तो रामानुजाचार्य इस लीला के द्वारा ये सिखाते हैं कि किस प्रकार से आध्यात्मिक गुरु की सेवा करने के लिए हमें वैष्णवों के प्रति अनादर या अपराध की भावना से रहित होकर हम वास्तव में कंटिन्यूअसली श्री गुरु को सर्व कर सकते हैं। तो महाप्रभु ने या नित्यानंद प्रभु ने इसी कारण से कहा, ठीक है तुम मुझे प्रसन्न कर सकते हो लेकिन साथ साथ क्या होना चाहिए, इन सारे वैष्णवों की सेवा में लगना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जितने मेरे ये पार्षद हैं, भक्त हैं, संगी हैं, इनको आप छेड़ा दही खिलाओ। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं वो तत्पर हो जाते हैं और बहुत सारा छिवड़ा दही आदि सब चीजें मंगाते हैं और बड़े बड़े पात्रों में भिगाया जाता है छिवड़ा दही चीनी केला आदि। धूती परि प्रभु जदि पिंडा ते बसिला सात कुंडी विप्रतारे आगे ते धरिला। जब ये चीड़ा बनाया गया दधी चीड़ा तो सात पात्र लाकर ब्राह्मणों ने नित्यानंद प्रभु के आगे रखे। चबूतरा ऊपरे जत प्रभु रानी जगने बड़ा बड़ा लोक बसिला मंडली रचने। तो नित्यानंद प्रभु बैठे थे, उनके चारों ओर अलग अलग भक्त गोल एक एक गोलाकार साइज में वो बैठ गए। तो कृष्णदास कविराज उन भक्तों के नाम लेते हैं, वो कहते हैं रामदास सुंदरानंद दास गदाधर मुरारी कमलाकर सदा शिव पुरंदर धनंजय जगदीश परमेश्वर दास महेश गौरीदास होड़ कृष्णदास उद्धारण दत्ता आदि जतन जगान ऊपर वसीला सब के करे गनान। तो ये सारे भक्त नित्यानंद प्रभु के संग में बैठे थे और इस चीज को बड़े बड़े जो विद्वान ब्राह्मण उस एरिया के थे वो सब ने सुना। तो उस स्थान में आए और नित्यानंद प्रभु के साथ ये सब लोग बैठ गए और हर एक भक्त को दो दो मिट्टी के पात्र दिए गए थे और दो मिट्टी के पात्रों में दो अलग अलग प्रकार का चिवड़ा था। एक था दूध से बना हुआ और दूसरा था दही से बना हुआ। तो सारे भक्त इस चिवड़ा को लेकर शुरुआत करने वाले थे और इतने लोग हजारों हजारों लोग आए। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि उस स्थान में जगह ही नहीं थी बल्कि कुछ लोग अपने हाथ में दो मिट्टी के पात्र लेकर गंगा के पानी के अंदर कमर से भी ऊपर वहां खड़े रहे हजारों लोग और सबका जो नजरें हैं वो नित्यानंद प्रभु की ओर थी। तीरे स्थान केह ऊपरे केह तले केह गंगा तीरे बीस जन तीन ठाई परिवेशन करे। तो इस प्रकार से जहां जहां स्थान मिल रहा था पानी के अंदर खड़े हो रहे थे और 20-30 लोग इस चूड़ा को सर्व कर रहे थे। हे न काले आयला तथा राघव पंडित हासिते लागिला देखी हय अविस्मय। तो उसी समय राघव पंडित जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है वो आए और वो ये सब चीज को देखकर वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आपके लिए तो मैंने घर में प्रसाद बनाया था आप सब भक्तों के लिए। नित्यानंद प्रभु को वो कहने लगे। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि जो आपने बनाया हुआ भोजन है वो मैं शाम के समय ग्रहण करूंगा। वास्तव में मैं तो एक गोप हूँ और गोप को एक जो ग्वाल बाल है उसके लिए प्रसाद लेने का सबसे अच्छा स्थान क्या है, नदी के किनारे पुलिना नदी के किनारे बैठकर अपने सारे संगियों के सखाओं के साथ भोजन करना मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो जब ये सबके पास ये दो प्रकार के चिवड़ा चले गए तो नित्यानंद प्रभु के सामने जब सात पात्र रखे थे तो नित्यानंद प्रभु ने हाथ में रखकर चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया चैतन्य महाप्रभु
उस स्थान में प्रकट हुए और कोई और देख नहीं पाया चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मैं इन इन स्थानों में प्रकट होऊंगा। नित्यानंद प्रभु जब वापस बंगाल आए थे तो वो दुखी थे। उन्होंने कहा है नित्यानंद जब तुम मुझे स्मरण करोगे और जिस स्थान में तुम नृत्य करोगे उस स्थान में मैं आविर्भूत हो जाऊंगा और जहां जहां मेरी माता सची माता अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर मुझे भोग अर्पित करती है उनको रोज खाने के लिए मैं नवद्वीप आता हूं। और ये जो राघव पंडित हैं दमयंती के जो भाई हैं वो जब अपने ड्यूटीज के लिए भोगा ऑफर करते हैं उस समय उनके घर का जो प्रसाद है या भोग है उसको स्वीकार करने के लिए मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने जैसे स्मरण किया चैतन्य महाप्रभु उस स्थान में आए और नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए और उन्होंने अपने हाथ में वो चिवड़े के जो पात्र हैं वो उन्होंने पकड़े हुए थे और चैतन्य महाप्रभु के मुख में क्या किया सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने ठूस दिया। ठूस दिया नहीं कह सकते, क्या कह सकते, खिलाया। याद कहते महाप्रभु मुख्य देना करी परिहास हासी महाप्रभु आर एक ग्रास लिया तार मुख्य दिया खाओ या हासिया हासिया। तो फिर एक दूसरे को चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ये खिला रहे थे। यही मत निताय बुले सकल मंडले दांडाइया रंग देखे वैष्णव सकले। तो लोग देख रहे थे नित्यानंद प्रभु को लेकिन कोई दो व्यक्तियों को नहीं देख रहा था, सबको अधिक से अधिक लोगों को केवल नित्यानंद प्रभु दिखाई दे रहे थे। और कुछ भाग्यवान लोग कृष्णदास कविराज कहते हैं महाप्रभु दर्शन पाए कौन भाग्यवान। तो महाप्रभु को कोई भाग्यवान ही देख रहा था कि नित्यानंद प्रभु उनको खिला रहे हैं और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को खिला रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को खिला रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो उत्सव है ये मनाया गया। आज्ञा दिला हरि बलि करह भोजन हरि हरि ध्वनि उठी भरि लभुवान। तो जब इन दोनों ने खाया तो नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी हरि हरि का उच्चारण करते हुए और फिर सारे लोग अपने सामने जो भोजन है उसको ग्रहण करने लगे। हरि हरि बलि वैष्णव करे भोजन पुलिना भोजन सवार हई लस्मरान। तो सब लोग वो चिड़ा दही को ग्रहण कर रहे थे और सबको कृष्ण लीला का स्मरण हो रहा था। कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण बलराम आदि और सखाओं के संग में यमुना के तट पर राउंड बनाकर भोजन करते हैं तो उसी लीला का स्मरण करते हुए सारे जो भक्त हैं उस चिड़ा दही को ग्रहण कर रहे थे और आनंदित हो रहे थे। नित्यानंद महाप्रभु कृपालु उदार रघुनाथेर भाग्य एत कैला अंगीकार। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु उनको स्वीकार करते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे वैष्णवों को आनंद प्रदान किया था। नित्यानंद प्रभाव कृपा जानी बे को न जान महाप्रभु आनी कराए पुली न भोजन। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा का कौन जान सकता है कि जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भी इस स्थान में ले आए। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु आदि ने इस भोजन को स्वीकार किया और जो नित्यानंद प्रभु ने ग्रहण किए हुए जो पात्र थे मिट्टी के जो उनका उच्चिष्ट भोजन था चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का वो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया और रघुनाथ दास गोस्वामी उनको ग्रहण करने लगे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर नित्यानंद प्रभु को माला अर्पित किया चंदन आदि अर्पित किया और तांबूल वगैरह दिया और नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी की सेवा से बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार से ये लीला का समापन होता है। कृष्णदास कविराज कहते हैं यही तक कहिलो नित्यानंदे रविहार चिड़ा दही महोत्सव नामे ख्याति जार। इस प्रकार से मैंने चिड़ा दही उत्सव का वर्णन किया है जो नित्यानंद प्रभु का विहार लीला है और इस उत्सव को चिड़ा दही महोत्सव कहा जाता है और ये उत्सव सारे जगत में प्रसिद्ध है। तो ये उत्सव पानीहट्टी ग्राम में हुआ था और आज भी इस्कॉन के सारे मंदिरों में ये उत्सव मनाया जाता है। चिड़ा दही बनाते हैं और भक्त लोग गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अर्पित करके उसका सेवन करते हैं। इसको स्मरण करने के लिए प्रभुपाद ने एक विदेशों में न्यू पानीहट्टी नाम का एक टेम्पल भी ये किया था, ओपन किया था। तो इस प्रकार से ये चेड़ा देवी फेस्टिवल नित्यानंद प्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी के बीच की लीला है, तो इस लीला का हमें स्मरण करना चाहिए और सीखना चाहिए कि किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी उन्मत्त हो गए थे चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति के लिए, परंतु नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना वो महाप्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। हेनो नेताय बिने भाई राधा कृष्ण पाए थे ना, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना राधा कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना असंभव है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए और नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं जिनसे कृपा की याचना करनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण और गुरु की सेवा करने के लिए हमें बल की आवश्यकता है, आध्यात्मिक बल, और आध्यात्मिक बल के स्रोत है बलराम या नित्यानंद प्रभु, तो उनसे हमें बल मिलता है, तब हम आध्यात्मिक सेवाओं को कर पाते हैं पूर्ण रूप से। श्री नित्यानंद प्रभु की, रघुनाथ दास गोस्वामी की, चिड़ा दही महामहोत्सव की, ताई गौर प्रेमानंदे
हरे
कृष्ण। सबको बोल
तो सब प्रसाद का यहाँ फिजिकल अरेंजमेंट तो नहीं कर पाए, बट लीला का स्मरण करते हुए
मन में ग्रहण
कर सकते हैं। और फिर ठीक 11 बजे बस निकलेगी, तो प्रसाद पाके जल्दी से अपना रेडी हो जाए और ठीक 11 बजे निकलेंगे। नाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कांसेप्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय।